प्रिय श्रोता नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से मलाकी नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक का मुख्य विषय है रूढ़िवाद को फटकार। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए रेडियो के निकट तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से पुराने नियम की पुस्तक मलाकी से अध्ययन कर रहे हैं, जो पुराने नियम का अंतिम पुस्तक है, और इसमें हम तलाक के विषय में देख रहे हैं। तो इससे पहले कि आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हमारे जीवन में फिर से दिया है ताकि हम मलाकी नबी की पुस्तक से अध्ययन कर सकें। प्रभु जी, आज हम परिवारों को देखते हैं तो हमें दुख होता है क्योंकि बहुत सारे परिवार तलाक ले चुके हैं। उन्होंने आपके उस विवाह के भेद की बातों को नहीं समझा है। आज जब हम मलाकी नबी की पुस्तक से अध्ययन करते हैं तो हमारी विनती है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों के जीवन में कार्य करें, उनसे बोले और बातचीत करें ताकि वे सच्चाई को पहचान कर अपने जीवन को आपकी निकटता में ला सकें। आज के वचन के द्वारा आप हम सबों को आशीषित करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना ईश्वर के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, हम सब मलाकी नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। मलाकी के युग में इसराइली अन्य जाति सुंदरियों को देख अपनी पत्नियों को तलाक देकर उनसे विवाह कर रहे थे। इससे परमेश्वर अप्रसन्न था। मूसा ने तलाक का प्रावधान किया था, परंतु वे तलाक की परिभाषा को बदलकर तलाक को अति आसान बना चुके थे। तलाक के विषय में हम प्रभु यीशु के विचार को देख रहे हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसके 9 पद में प्रभु यीशु ने स्पष्ट कहा है कि व्यभिचार को छोड़ तलाक का अन्य और कोई कारण नहीं है। जी हां, परमेश्वर ने उन्हें जोड़ा है और मनुष्य विवाह की इस एकता को भंग नहीं कर सकता है। इसके बाद प्रभु यीशु हमारी स्वतंत्रता की चर्चा करता है। मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसके 11 और 12 पद में कहता है, उसने उनसे कहा, सब यह वचन ग्रहण नहीं कर सकते, केवल वे जिनको यह दान दिया गया है, क्योंकि कुछ नपुंसक ऐसे हैं जो माता के गर्भ ही से ऐसे जन्मे और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्हें मनुष्य ने नपुंसक बनाया और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्होंने स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बनाया है। जो इसको ग्रहण कर सकता है वह ग्रहण करे। मेरे प्रियो, आवश्यक नहीं कि हर एक मनुष्य विवाह करे। कुछ स्त्री पुरुष ऐसे हैं जिन्हें विवाह करने की आवश्यकता नहीं। किसी भी प्रकार से क्या अविवाहित रहना पाप है? कुछ मनुष्य ऐसे हैं जिन्हें विवाह करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि वे नपुंसक हैं। कुछ मनुष्यों को मनुष्य नपुंसक बनाता है, जैसे राजा नबूकदनेस्सर के महल में दानियल को नपुंसक बनाया गया था। ऐसी स्थिति में नपुंसक बनाया जाना एक उद्देश्य के तहत था, बंदियों को विनित बनाया जाए और उन्हें अध्ययन में अधिक ध्यान लगाने योग्य बनाया जाए। अब कुछ पुरुष स्वर्ग के राज्य के निमित्त नपुंसक बने हुए हैं। कुछ पुरुषों ने अपने आप को प्रभु यीशु और कलीसिया के प्रयोजन के निमित्त अपने आप को नपुंसक बनाया है। यदि कोई स्त्री या पुरुष इस योग्य हो जाए तो वह एक अद्भुत बात है। मैं अनेक प्रचारकों को जानता हूं जिन्होंने विवाह नहीं किया है। मैंने भी अपनी सेवा में ऐसा ही रहने का विचार किया था और यह निर्णय लिया कि आजीवन कुंवारा रहूंगा, परंतु मैंने शीघ्र ही सीखा कि अविवाहित रहना मेरे लिए ठीक नहीं है। यह एक क्षेत्र है जिसमें हमें महान स्वतंत्रता प्राप्त है। परंतु मुख्य बात यह है कि प्रभु यीशु कहता है कि यदि आप विवाह करें तो यह संपूर्ण जीवन का समर्पण है। तलाक का एकमात्र आधार है आपका साथी व्यभिचार करे। मेरे प्रियो, आरंभिक कलीसिया के युग में व्यभिचार की समस्या कुरिंथ नगर की कलीसिया में उत्पन्न हुई थी। उस कलीसिया में विभिन्न पृष्ठभूमियों के विश्वासी थे। जब उनका विवाह हुआ था तब वे मसीही विश्वास में नहीं थे। उस समय या तो पति या पत्नी मसीह में विश्वास लाए थे। अब यदि पति या पत्नी विश्वास में आ जाए तो उनका संबंध कैसा हो? पौलुस इस नई परिस्थिति में अपने विचार को प्रकट करता है। पहला कुरिन्थियों की पत्री 7 अध्याय उसके 10 और 11 पद में कहता है, जिनका विवाह हो गया है उनको मैं नहीं वरन प्रभु आज्ञा देता है कि पत्नी अपने पति से अलग ना हो, और यदि अलग भी हो तो बिन दूसरा विवाह किए रहे या अपने पति से फिर मेल कर ले, और ना पति अपनी पत्नी को छोड़े। यदि किसी का विवाह अन्य जाति विश्वास में रहते समय हुआ था परंतु अब उनमें से एक मसीही विश्वास में आ गया है, तो जो मसीही विश्वास में है वह विवाह विच्छेद न करे। यदि किसी विश्वासी ने विवाह विच्छेद कर लिया है तो वह शेष जीवन अविवाहित रहे या अपने जीवन साथी से फिर मेल कर ले। तदुपरांत वह अपने व्यक्तिगत विचार व्यक्त करता है, पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय उसके 12 से 15 पद में। दूसरों से प्रभु नहीं परंतु मैं ही कहता हूं, यदि किसी भाई की पत्नी विश्वास न रखती हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो तो वह उसे न छोड़े। जिस स्त्री का पति विश्वास न रखता हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो वह पति को न छोड़े, क्योंकि ऐसा पति जो विश्वास न रखता हो वह पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है, और ऐसी पत्नी जो विश्वास नहीं रखती पति के कारण पवित्र ठहरती है। नहीं तो तुम्हारे बाल बच्चे अशुद्ध होते परंतु अब तो पवित्र हैं। परंतु जो पुरुष विश्वास नहीं रखता यदि वह अलग हो तो अलग होने दो। ऐसी दशा में कोई भाई या बहन बंधन में नहीं। परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप के लिए बुलाया है। यद्यपि प्रभु यीशु ने केवल व्यभिचार को तलाक का कारण बताया है, दंपत्ति का अविश्वासी अन्य जाति पक्ष तलाक लेना चाहता है और कहता है, मुझे ऐसा वातावरण पसंद नहीं। जब मैंने विवाह किया था तब ऐसी परिस्थिति नहीं थी, परंतु अब सब कुछ बदल गया है, अतः मैं अब अलग होना चाहता हूं। ऐसी परिस्थिति में पौलुस कहता है कि उसे जाने दिया जाए। अब वह अविश्वासी अन्य जाति जीवन साथी पुनः विवाह करे या ना करे, इस परिस्थिति में मैं जो समझता हूं वह यह है कि विश्वासी पति हो या पत्नी, वह पुनः विवाह करने के लिए स्वतंत्र है। पौलुस कहता है, कोई भाई या बहन बंधन में नहीं, तो बंधन से उसका अभिप्राय है विवाह की शपथ। परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप के लिए बुलाया है। जी हां, यहां पौलुस के कहने का अर्थ है कि परमेश्वर यह नहीं कहता है कि कोई भी स्त्री या पुरुष विवाहित जीवन के नरक में न जले, कभी नहीं। यदि वे साथ रह नहीं पाते और कुत्ता बिल्ली के समान प्रतिदिन लड़ते और झगड़ते रहते हैं तो मेरे विचार में उन्हें अलग हो जाना चाहिए। अनेक परिस्थितियों में मैंने भी दंपतियों को अलग होते हुए देखा है और कई बार मैंने परामर्श भी दिया है, परंतु एक शर्त पर कि वे पुनः विवाह ना करें। उनकी समस्या विवाहित जीवन नहीं तलाक है। पहले तो उन्हें विवाह ही नहीं करना चाहिए था। परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप के लिए बुलाया है, अतः हमारा घर कुश्ती का अखाड़ा ना बने, वह प्रेम का स्थान है। मेरे प्रियो, प्रेम से भरा हुआ परिवार परमेश्वर का आदर्श है। परमेश्वर तो आरंभ ही से तलाक को स्वीकार नहीं करता है, परंतु मनुष्य के पाप के कारण उसने तलाक की अनुमति दे दी है। अब आप कहेंगे तलाक देना पाप है। जी हां, यह पाप है, जैसे हत्या करना पाप है। परंतु हत्यारे को पापों से उद्धार प्राप्त हो सकता है। प्रभु यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए अपराधियों में से एक का उद्धार हो गया था। प्रभु यीशु मसीह सबके पापों के लिए क्रूस पर मारा था। उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए अपराधी चोर और हत्यारे थे। उनमें से एक ने प्रभु यीशु मसीह और क्रूस पर से बह रहे उसके लहू पर विश्वास किया, जिसके कारण उसका पापों से उद्धार हुआ। एक चोर को पापों से उद्धार प्राप्त हो सकता है, एक तलाकशुदा व्यक्ति को भी उद्धार प्राप्त हो सकता है। अतः हम तलाक को एक अलग विशेष वर्ग में न रखें। यदि उद्धार से रहित मनुष्य चोर है परंतु वह मन फिराकर प्रभु यीशु को ग्रहण कर लेता है, तो उसे चोरी के पाप से क्षमा प्राप्त होती है। हम ऐसे मनुष्य को विवाह करने की अनुमति दे सकते हैं। हत्यारे के साथ भी हम ऐसा ही कर सकते हैं। मेरे प्रियो, अब हम तलाक के साथ भी निष्पक्ष व्यवहार करें। कुछ लोग मसीही विश्वास में आने से पहले ही विवाह विच्छेद कर चुके होते हैं। यदि वे प्रभु यीशु के पास आ जाएं, तो उनका तलाक का पाप क्षमा किया जाता है। मेरे विचार में ऐसा मनुष्य पुनः विवाह के लिए स्वतंत्र है, और मेरे विचार में धर्मशास्त्र में इसका अभिप्रेत अर्थ निहित है, क्योंकि इसके बारे में हम अधिक नहीं पाते हैं। विवाहित जीवन और तलाक के विषय में मैं अपना संदेश सर्वोत्तम प्रेम की चर्चा करना चाहता हूँ। सर्वोत्तम प्रेम आज मनुष्यों के मन में यौनाचार का जो विचार में और घर में बस गया है, वह निस्संदेह भयावह और संकटपूर्ण है। आपको वर्तमान साहित्य पढ़कर इसे समझना होगा। अंग्रेजी के एक समाचार पत्र में लिखा था, जनमान्य नैतिकता अब बंजर भूमि है, जिसमें टूटे हुए अपराध बोध कूड़े के समान पड़े हुए हैं। अमेरिका के न्यायालय के न्यायाधीश बेरन ने कहा था, आज बहुत से कॉलेजों में विद्यार्थियों के मध्य यौनाचार एक खतरनाक और बुद्धिमान बुराई है। बिली ग्राहम की पत्रिका डिसीशन अर्थात निर्णय के संपादकीय में कभी 1964 में शायद लिखा था, हमारा युवा वर्ग ऐसे वातावरण में नरक के मार्ग पर दौड़ा चला जा रहा है, जो किसी भी सम्मानित पशु को घृणा से भर देगा। कोई ध्यान नहीं देता कि स्थिति जैसी दिखती है अत्यधिक खतरनाक है। मेरे प्रियो, यह एक बहुत बड़ी बात है। अमेरिका के एक विशिष्ट लेखक ने लिखा, आत्मा की आंतरिक पुकार के साथ चलने वाली बाध्य करने वाली बाहरी पुकार कहाँ है, जो कभी कभी कानों में बुदबुदाती है तो कभी ऊंचे शब्द में चिल्लाती है कि सब अच्छा नहीं है, कि मन मौजी पांव क्रोध के मार्ग दंड की राह पर चल रहे हैं। फिर वह कहता है, इसका समाधान अधिकाधिक नियम निर्धारण में नहीं, परमेश्वर के आत्मा द्वारा नया जन्म पाने में है। वही मनुष्य की आत्मा में जलन उत्पन्न करके उच्च पवित्रता की प्यास को जगाता है, जो मनुष्य और दैहिक नीति के लिए आवश्यक है। ऐसी आत्मिक जलन और प्रायश्चित अर्थात शोधन के अतिरिक्त मनुष्य अपने पाप के बोझ और विनाश में दब जाता है। मेरे प्रियो, ये उद्धरण सन 1965 के हैं, परंतु अन्य आवाजें भी चेतावनी दे रही हैं। इन सब बातों के उपरांत भी इस कामात्यम संप्रदाय के पक्षधर अनेक हैं, जो कहते हैं कि यौनाचार पर बल देना एक नए उदार विचारों के ज्ञान विज्ञान के युग का आरंभ है। परंतु सच तो यह है कि इसमें कुछ भी नया नहीं है। इसके अतिरिक्त यह बहुतायत के जीवन के प्रवेश द्वार का संकेत भी तो नहीं है। दूसरी ओर यौनाचार ही के कारण अतीत की सभ्यताएं जैसे मिस्र, बेबीलोन, यूनान रोम आदि का पतन हुआ है। यौनाचार ही के कारण अनेक महान एवं कुलीन मनुष्यों का नाश हुआ है। यह नाशमान राष्ट्र की मृत्यु की झंझनाहट है। फ्रांस के आंदोलन ने उस देश की गरिमा का अंत कर दिया था, क्योंकि उस समय उन्होंने एक वेश्या को वेदी पर बैठाकर उसकी उपासना आरंभ कर दी थी। मेरे मित्रों, इस विषय पर आवश्यकता से अधिक ध्यान देने का बहाना जो उन अश्लीलता और कामुकता के प्रबंधकों ने बनाया है वह था कि पिछली पीढ़ी ने इस विषय पर पत्थर रख दिया है। उनका झूठा आरोप है कि बाइबल और कलीसिया ने यौन के विषय पर यहां तक अप्रसन्नता प्रकट की है कि यह एक वर्जित विषय बन गया है और इसकी चर्चा केवल गुप्त रूप में ही की जाए। वे आज के विवाहित जीवनों की असफलता का और तलाक में वृद्धि का दोष युवा वर्ग के अज्ञान को देते हैं। उनका कहना है, यदि वे इस लुभावन विषय का अधिकाधिक ज्ञान ग्रहण करें तो विवाहित जीवन सफल होंगे। मेरे प्रियो, यह सच है कि पूर्व काल के धार्मिक संप्रदायों ने इस विषय के वर्जन पर सीमा पार कर दी थी, मैं स्वीकार करता हूं, परंतु दुख की बात तो यह है कि आज की पीढ़ी भी तो समाधान नहीं खोज पाई है। और सच तो यह है कि बाइबल न तो पूर्व के अतिवादियों के साथ और न ही आज के सुधारवादियों का समर्थन करती है। यौनाचार के विषय सबसे पहले किसने सोचा था? मित्रों, इसका प्रतिपादन परमेश्वर ने किया था और वह इसे पवित्रता प्रदान करना चाहता था। आज का विचार है कि बोलने और प्रकाशन पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगाना चाहिए, परंतु ये लोग युवा पीढ़ी को अश्लील साहित्य और पुस्तकों द्वारा अनैतिकता के गर्त में ले जा रहे हैं। वे ऐसा प्रभाव डालते हैं कि आपको व्यवहार कुशल और परिष्कृत होने के लिए इस व्यभिचारी और कामुक विषय का ज्ञान होना आवश्यक है। इस भ्रष्टाचार ने हर जगह को दूषित कर दिया है और आज का पिता कहता है, ऐसा नहीं है कि मैं अपने पुत्र को क्या समझाऊं, परंतु वस्तु स्थिति यह है कि वह क्या जानता है जो मैं नहीं जानता। यौन संबंधों पर इस नई विचारधारा के उपरांत भी न्यायालयों में विवाह की दुखद घटना तलाक की कहानी का अधिकाधिक दोहराया जाना चरम सीमा पर है। सुखी विवाहित जीवन के लिए शारीरिक ज्ञान अपना स्थान है, परंतु यह अपने आप में पूरा नहीं है कि विवाहित जीवन सुखी हो, और यह एक विकृत विचार है जिसका विवाहित जीवन में उचित स्थान नहीं है। किसी बुद्धिमान मनुष्य ने कहा है, संसार के साथ जो समस्या है वह यह है कि यौनाचार को प्रेम का, धन को बुद्धि का और रेडियो को सभ्यता का स्थान दिया जाता है। आज की समस्या यही है। मेरे मित्रों, आप यह न सोचें कि आप बच रहे हैं। आप इस संसार में रहते हैं और ये बुराई प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। आज तलाक है, कल है, हम नहीं जानते कि परिवार में क्या है। जब तक प्रवेश के निकट आपका जीवन नहीं है, तो आप निश्चय जाने कि आप हर समय एक खतरे से गुजर रहे हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपका परिवार बचे, आपके बच्चे बचाए जाएं, आप उद्धार का आनंद पाएं? तो आप प्रभु की ओर लौट आइए, उससे प्रेम कीजिए, उसके उस बंधन को, उसके प्यार को आप समझ जाइए। मेरे प्रियो, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि इस अध्ययन के द्वारा आज आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है, अपने परिवार के बारे में सोचा है, जाना है। यदि नहीं, तो आज अवश्य ही आप इस पर विचार करें। प्रभु आप सबकी सहायता करें।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। नोट करें हमारा एक और मोबाइल नंबर 09651433397, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
जगा मिली मेरा दिल पुकारे बसे मसे, तेरा प्यार है मेरी जिंदगी है मेरा मसीह। तेरे दिल में मुझको जगा मिली मेरा दिल पुकार मसीह मसीह। मैं अंधेरी राह पे हो लिया, मैं गुनाह की वादी में खो गया। मैं अंधेरी राह पे हो लिया, मैं गुनाह की वादी में खो गया। तेरी आँख मुझ पे लगी रही, तेरी आँख मुझ पे लगी रही, मेरे पास आई सलामती। तेरे दिल में मुझको जगा मिली मेरा दिल पुकार मसीह मसीह। तेरा प्यार है मेरी जिंदगी मेरी जिंदगी।